26 नंबर के रिलेशन में 38 सीट पर 14 सीट राखी का प्रातः क्लास चल रहा था, 2 पीस पर मध्यान्ह में। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए दे। आ करके बनाते हैं, ऐसे नहीं जा करके आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं और अपने आप पारस बुद्धि बनते रहते हैं। नहीं, कब्रस्तान से परिस्थान बनाए रहे। कौन सा स्थान? कब्रस्थान जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं। ज्ञान में चलते चलते सब कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनते, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखते, जैसे कि मुर्दे बने पड़े। ऐसे जो कब्रस्तान वासी है उनको परिस्थान वासी बनाते हैं। कहां का स्थान वासी? कलियों का स्थान, ज्ञान योग की परियों से उड़ने वाली, पंखों से उड़ने वाली परियों का स्थान बनाए देते। यहाँ तो देखो घड़ी घड़ी साल आकर के कब्र दाखिल कर देते, वहां तो ऐसे नहीं होता है। कहाँ? स्वर्ग में जो 21 जन्म है उनमें से जो पहला जन्म है जिसका बाप लक्ष्य देते हैं, तो किसी संगनी की स्वर्ग में वहाँ काल किसी को नहीं खाएगा, सब अमरनाथ के अमर बच्चे होंगे, कोई अनिश्चय की मृत्यु को नहीं पाएगा। और यहाँ तो घड़ी घड़ी अनिश्चय हो जाता है, अभी अभी बाप के बच्चे हैं, अभी अभी मर पड़ते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नहीं ले लेते हैं, वैसे वहां भी पुराना चेला छोड़ा दे अभिमान का और नई खाल धारण कर ली। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं, ये दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। संगम तो फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगाए देते हैं। सर्प का मिसाल दिया कि जैसे सर्प खल क्या करता है, वैसे शरीर छोड़ना, तो वो समाधि में बैठ जाते हैं, निल अवस्था में चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। ये बात नहीं है, यहाँ तो बाप जीते भी मरना सिखाते हैं, शरीर छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन देह बांध छोड़ने की बात है। ये ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाता है। जो अंदर से आवाज तो नहीं निकलती उनकी, क्योंकि जब सबसे बाप प्रत्यक्ष होता है तो झूठे सन्यासी सामने आकर के आवाज कैसे निकालेंगे? तो अंदर ही अंदर उनकी बुदबुदाहट की आवाज चलती रहती है, बुदुर बुदुर बुदुर। ऐसे अंदर से संकल्प चलाने वाले बुदबुदे वो सब सागर में लीन हो जाते हैं। कब? अंत में जब विनाश होता है, अंतिम प्रत्यक्षता जब होती है तो बुदबुदे भी पानी में लीन हो जाते हैं। अर्थात जो विरोधी संकल्प चलाने वाली आत्माएं हैं मुख से कुछ नहीं बोल सकती, वो भी परमात्मा बाप के संकल्पों में लीन हो जाती है। उसको उन्होंने कह दिया सागर में बुदबुदा समाया जाता। कोई कहते ज्योति ज्योति में लीन हो जाती। अब कोई स्थूल ज्योति तो है नहीं, ना आत्मा की कोई स्थूल ज्योति की बातें है, ना परमात्मा की कोई स्थूल ज्योति की बातें है। ज्योति है ज्ञानी की, आत्माओं की जो सुंदर सुंदर मतें भिन्ना अलग अलग मतें हैं, वो सब मतें ज्ञान की अलग अलग प्रकार की ज्योति, वो सब एक ज्योति परमात्मा की ज्योति में मिल जाती है, समा जाती है। अभी तो अनेक मतें हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े, कंपल्शन है क्या कि जो एक मत एक ही द्वारा मिलती है उस पर तुमको चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे याद करते पुकारते आए, मैं एक ही बार आता हूँ, पुकारा तो जन्म जन्मांतर लेकिन आता हूँ एक ही बार, इसलिए पुकारा पतितों को पावन बनाने के लिए पुकारा, ज्ञान सिर्फ सुनाने के लिए नहीं पुकारा। ऐसे नहीं कहते हैं पति तो पावन आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, नहीं, तुमने पुकारा ही है पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मैं एक ही बार आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि एक बार ज्ञान सुनाने के लिए आऊंगा फिर दूसरी बार पावन बनाने के लिए आऊंगा, नहीं। इसकी लाइन में अगर ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो मुरली ने पहले ही बता दिया कि यह ब्रह्मा अगर शरीर छोड़ जावे तो जो ब्राह्मण में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की भी शक्ति रखी जाती है और ब्रह्मा द्वारा देवताओं की शक्ति भी रची जाती है। एक ब्रह्मा अपूर्ण और एक ब्रह्मा संपूर्ण। ब्राह्मण अपूर्ण होते इसलिए उनकी माला नहीं बनती और देवताएं संपूर्ण होते हैं इसलिए उनकी माला भी बनती है। तो तुमने बहुत बार पुकारा है, मैं गुलाम तेरा, बाप आकर के गुलाम बने से छुड़ाते, तुम गुलाम बन पड़े माया के, बाप आकर इनसे लिबरेट करते गुलामी से, माया की गुलामी से तुमको लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं गुण लोगों की जंजीरों से। फिर भक्ति की जंजीर है जो गुरु लोग फैलाते, पीढ़ी के चित्र में जंजीरें फैलाई हुई है, रावण के 10 सिर दिखाई गए और उन 10 सिरों से जंजीरें निकल रही है, वो है अनेक मतों की जंजीरें, अनेक प्रकार के गुरुओं की जंजीरें जो अनेक धर्मों से कनेक्टेड है, तो उनकी जंजीरों से लिबरेट करते तुम सबसे बाप आकर छुड़ाते। ऐसे नहीं कि बाप चले जाते हैं फिर तुम अपने आप छूटते रहते हो, याद करते रहते हो, नहीं, बाप आकर के छुड़ाते हैं। तुम जानते हो बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने आए हैं, अब भक्ति का पार्ट पूरा हुआ, ज्ञान भक्ति फिर है बयान। ज्ञान माने जानकारी पहचान, एक बाप की जब सच्ची पहचान होती है तो भक्ति से वैराग हो जाता है, क्योंकि भक्ति पहले होती है अद्विचारी फिर बाद में हो जाती है द्विचारी, और ज्ञान तो एक से ही आता है, ज्ञान आता है एक से और अज्ञान आता है अनेकों देहधारी धर्म गुरुओं से। वैराग भी दो प्रकार का है। वो सन्यासियों का वैराग है घर बार छोड़ने का, ब्राह्मण की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं जो घर बार छोड़ के बैठ जाते हैं। तो वो घर घाट छोड़ने का उनका सन्यास है, बाप घर घाट नहीं छुड़ाते, न घर वाले को छुड़ाते हैं और न घर घाट छुड़ाते हैं। यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग, सिर्फ घर घाट को छोड़ने की बात नहीं, बुद्धि से तुम सारी दुनिया को भूल जाते हो। ये तो तुम बच्चे जानते हो, ये सब भस्म हो जाते हैं। कौन कुछ भी नहीं रहेगा, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब खलास हो जाएगा। किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले जाए चोटता और किनकी आग जलाए, क्या दबी रही धूल में। धन संपत्ति भी धूल में दबी रह जाएगी। जिन्होंने जमीन में गाड़ दिया, भूकंप होगा तो जहाँ की तहाँ दबी की दबी रह जाएगी, निकाल भी नहीं पाएगी। और फिर ब्राह्मणों की दुनिया की जो धन संपत्ति है, ज्ञान, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, उनकी भी जो धन संपत्ति जो दूसरों को देते नहीं है, दबा करके रखी हुई है, छुपा करके रखी हुई है, देना चाहिए लेकिन देते नहीं, वो उनकी धन संपत्ति भी उनके दे अभिमान की धूल में दबी रह जाएगी। माना अभी अहंकार में आकर के सच्ची बात दूसरों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो ऐसा टाइम आएगा कि वो उनकी संपत्ति झूठी से भरी रह जाएगी। जानते सब कुछ है, रावण के लिए भी कहते हैं प्रकांड विद्वान था, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं, जानता सब कुछ था लेकिन दे अभिमानी की धूल में सब कुछ गवा गए। पर ऐसे समय चोर आदमी आकर लूट ले जाते, चोर तो अपने सब कुछ में सबको पता है कि ब्राह्मण की दुनिया के चोर कौन से हैं, कौन से चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये ऐसे चोर डकैते हैं जो किसी को छोड़ते नहीं है। तीसरा चीज, जैसे एरोप्लेन गिरती है, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आस पास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिल ही जाता है, जब तक पुलिस आवे तब तक वो लूटपाट कर लेते हैं। ये विनाश तो होना ही है, कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है, पंप एंड शो, असली सुख नहीं है। किस तरफ? अमेरिका आदि की तरफ। नाम क्या रख दिया? आ मेरे क्या, आ जाओ, डरते क्यों हो, तुम मेरे हो क्या? इसका मतलब नजदीक नहीं आ सकते। क्रिश्चियंस पिछाड़े वाले हैं ना, जो अगाड़ी वाले हैं वो तो पूरे चौरासी जन्म लेने वाले हैं। चार मुख्य धर्म हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तो पिछाड़ी वाला कौन हुआ? क्रिश्चियन। तो जो पिछाड़ी वाले हैं उनका सुख का पार्ट अभी लास्ट का है, शुरुआत का सुख का पार्ट जो बाप देने वाला है वो लेते नहीं, मारे अहंकार के क्रोध के। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर, चंद्रमा पर जाएंगे क्या? जो चमकने वाले ग्रह उपग्रह हैं, जो नौ रत्न हैं, उन रत्नों तक उनकी पहुंच हो जाती है, चंद्रमा पर उनको पहुंच हो जाती है। ब्राह्मण की दुनिया का चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। चंद्रमा में स्टार्स में जमीन ले लेते हैं, जमीन माना धरणी। जो चंद्रमा के खाते की धरणी है, उस धरणी के ऊपर भी कब्जा कब्जा करके बैठते हैं। ऐसे समझते हैं कि हम ये धरणी ले ले रहे। धरणी कौन है? कन्याएं माता ही धरणी है। रामकृष्ण अवतार कन्याओं माताओं का आधार लेकर के चलते हैं, पर जानवरों के भी अवतार दिखाए। वो कोई कन्याओं माताओं का आधार नहीं लेते। भारत माता का देश है, भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता है। हाँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं कोई वहाँ दुनिया है। कहाँ? स्टार्स और चंद्रमा पर। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, वो समझते हैं कि जापान में नक्शे में जापान पूरब में है, तो जापान में पहले सूर्योदय होता है, तो वो समझते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। वास्तव में उसे स्थूल सूर्य की बात नहीं है, उसे स्थूल दुनिया की बात नहीं है, ये तो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया है, जिसमें ज्ञान सूर्य बाप जब जब प्रत्यक्ष होता है। तो पहले पहले बौद्ध धर्म की आत्माएं जो भारतीय है, शुद्ध भारतीय राइट साइड की कल्पवृक्ष में, उनमें ब्रह्मचर्य की पावर ज्यादा होने के कारण, सात्विक बुद्धि होने के कारण पहले पहले बाप को पहचान लेती है। इसलिए बौद्ध भी लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी, क्योंकि बौद्धियों का धर्मखंड भी विदेश ही कहा जाता है, और बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो विदेशियों में पहले पहले निमित्त बनते हैं कौन? बौद्ध। इसलिए जापानी लोग आज भी कहते हैं क्या हम सूर्यवंशी, तो कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, तब स्वर्ग था। और वंश जब आए, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, तो नरक बन गया। और स्वर्ग कब था? जो वंश बाप ने स्थापन किया सूर्यवंश और चंद्रवंश, उस समय स्वर्ग था। इन्हें जैसा उच्च खंड कोई हो नहीं सकता। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं है कि कोई बदली करना चाहे कि नहीं सूर्यवंश और चंद्रवंश और भारत खंड नहीं, भगवान क्यों आते? सूर्यवंशी चंद्रवंशी ज्यादा सुख भोगने वाले क्यों हैं? ये तो समझने की बात होती है। भारत की महिमा अभी की है, किस समय की? अभी की मैंने जिस समय भगवान भारत में आते हैं, उसी समय की वास्तव में भारत की महिमा है। क्यों? विदेशियों ने बाप को पहले पहचाना, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, विदेशी पहले अपने बाप को अपना बनाते हैं, तो भारत की महिमा फिर क्यों? विदेशियों की महिमा होनी चाहिए, भारत की महिमा होनी चाहिए। क्या कारण हुआ जो महिमा भारत की जाती हो जाती है? कारण यही है कि जानना बड़ी बात नहीं, मानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन निभाना बड़ी बात है। बाप के बन तो सब जाते हैं, लेकिन बन करके है निभाना, ये कोई कोई को आता है, और निभाने के आधार पर ही नंबर के नंबर बनते हैं। तो भारतीय परंपरा है कि जिसको एक बार अपना बना लिया, जिसको एक बार अपनी शरण में ले लिया, या जिसके हम एक बार बन गए, तो फिर उसे तोड़ते नहीं। खास भारत माताओं की ये परंपरा है, विदेश की माताओं की ये परंपरा नहीं है। विदेशी कन्याएं माताएं इस परंपरा को नहीं निभाने वाली हैं, उनके अंदर ये अभ्यास नहीं है। भारतीय कन्या माताओं के अंदर ये अभ्यास है, इसलिए भारत की महिमा बहुत है। हम कहते हैं गीता में अगर शिवदारा का नाम होता तो शायद इनको बहुत मान देते, इनको भारत को। परंतु ऐसे भी नहीं कि शास्त्र फिर बनेंगे तो उसमें चेंज कर देंगे, बनाएंगे फिर वो शास्त्र जो अब है। अगर शिव बाबा को जान जावे तो साध उनकी कितनी महिमा करे। साथ का सदगति दाता बाप है तो साथ को फूल चढ़ाना पड़ेगा। फूल चढ़ाना पड़े, फूल क्या होता है? तो साथ में ही फूल कही जाती हैं, जो परमात्मा बाप के ऊपर अर्पण की जाती हैं। परमपिता परमात्मा का नाम डालें तो पहले पहले सब उनके पास जाए। अभी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण आदि जो भी हैं, वो सब इस समय कौड़ी के लिए हैं। इस समय 21 जन्मों की प्रारब्ध शुरू होने से पहले लक्ष्मी नारायण आदि सब कौड़ी के लिए हैं। कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने के लिए बाप आते हैं। अगर बाप ना आए तो वह सात समो प्रधान भी बने रहे। लक्ष्मी नारायण भी समो प्रधान बने रहे। सती के त्रेता में आने वाले जो भी लक्ष्मी नारायण की देन आती है वो सात समो प्रधान बनी रहे। और अष्टरत्न अष्टदेव जो नवग्रहों के रूप में भारतवर्ष में पूजे जाते हैं हर अनुष्ठान में, वो भी समय प्रधान बने रहे। तब अगर बाप ना आवे, सबका मोक्ष दिलवद मुक्तिदाता बाप ही है। कहते हैं मैं सास को ले जाता हूँ, फिर जो भी आते हैं पहले वह जीवन मुक्ति में रहते हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको मैं वापस न ले जाऊं, नंबर वार ले जाता हूं।
मतलब वापस उसी शक्ति पर आपको मैं पार्ट बनाने तो पहले जन्म में जीवन मुक्ति सबसे नहीं है। कम से कम जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। बच्चे जब शांत में बैठे हैं तो हमेशा सधर्म में बैठे हैं। मैं आत्मा हूँ,
बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगलों में नहीं जाना पड़ता है, कहीं छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है। क्या कि वहां जाकर के हमको कोई शांति मिल जाएगी? नहीं, सारी दुनिया इस समय क्या है, कांटों का जंगल है। कहाँ जाएंगे भाग करके? कोई भी सन्यासी आवे तो तुम समझा सकते हो शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम क्यों इधर उधर भागने की बात सोचते हो? बच्चा जो गले का हार है वो जब चाहे पहनो और जब चाहे उतार दो। तुम कहाँ ढूंढती हो शांति को? जहाँ भी अपने को आत्मा समझ करके बैठेंगे तो शांति ही शांति है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा की स्थिति वाले को कभी कोई दुख नहीं दे सकता। आत्मा की स्थिति वाला न दुख देगा और न दुख लेगा। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत, फिर यहाँ शरीर में आने से ताकी बनता हूँ। बोल बोल की बात कभी शुरू होती है? जब दो धान में आते हैं तो बोल बोल की बात शुरू होती है, झगड़े शुरू होते हैं। एक ने कुछ बोला और दूसरा चुप हो जाए। देवदान की बात का जब आप देवदान में न दे तो लड़ाई होगी। दो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती। साइलेंस में तो नाटक होता ही नहीं है। पहले मूवी बायोस्कोप चलता था, सूक्ष्म बटन में भी मूवी है, आवाज नहीं निकलता। उस समय जो कल्प पहले समझा था वो समझ करके आकर के सुनाते, कोई नई बात नहीं है। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता रहता है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। सारा शरीर लेकर के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। नीचे नीचे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात करते हैं। ये तो वो ज्योतिबिंदु पार्ट पार्ट धारी बनता है। उस पार्ट के आधार पर उसका नाम पड़ता है, जैसा काम वैसा नाम। तो कहते हैं माँ में कर याद करो, मुझे एक को याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। तो जरूर है पहचान होनी चाहिए कि वो एक ही कौन है वास्तव में पर्टिकुलर। उस पर्टिकुलर को याद करना पड़े, क्योंकि आत्मा तो बिंदु बिंदु ढेर हैं। मनुष्यों की भी 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, जानवरों की भी है, पशुओं की भी है, पक्षियों की भी है, और कीड़े मकोड़ों की भी आत्माएं। तो कौन से बिंदु को याद करें? कैसे पता चले मानो तब तक? कहेंगे जो सबसे ऊपर रहता है उसको याद करें। बात को बुद्धि पहुंचती है कभी? सबसे ऊपर जहाँ रहता है वहां तक बुद्धि की पहुंच भी हो पाती है? अरे वो तो इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो ऊपर नीचे की तो बात नहीं, जरूरी स्टेज की बात है। जो ऊंची स्टेज में रहने वाला है, जिसकी यादगार बना हुआ अमरनाथ, उस ऊंची से ऊंची स्टेज वाले को याद करना है, तो हम भी ऊंचे बनेंगे। ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि मान एकम याद करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की तो रात भी होती है और ब्रह्मा का दिन भी होता है। ब्रह्मा की रात कोई सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की बात नहीं है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहाँ होता है? संगम युग में होता है। संगम युग में ही ब्रह्मा होता है, संगम युग में ही ब्राह्मण होते हैं। तो रात और दिन कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग उन चार युगों की बात नहीं है। वहाँ न ब्रह्मा होता है न कोई ब्राह्मण होता है, ये एक समय की बात है। जबकि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, तो जब तक न बनाए तब तक ब्रह्मा का पार्ट इसी सृष्टि पर चलता है। पार्ट साकार सृष्टि में चलेगा या ऊपर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में चलेगा? पार्ट तो साकार सृष्टि पर चलता है। तो ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि मां ने एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, तो कौन कहेगा फिर? ये ब्रह्मा तो कहेंगे नहीं मुख से कि मां ने एकम याद करो। फिर ये कहता है कि मुझे माँ लेकर याद करो, आत्माओं से बाप बात करते हैं, तो जो बात करने वाला है वो तो मुख ही होगा ना, वो मुख कौन सा जो बात करता है कि माँ लेकर याद करो। इतनी गुह्य बातें हैं, जो कहता है मुझे इसको याद करो वो जरूर मुख वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं उसको मुख ही नहीं होगा। भाग्यशाली को याद करेंगे, दुर्भाग्यशाली को याद करेंगे, किसको याद करेंगे? भाग्यशाली को याद करेंगे तो भाग्यशाली बनेंगे, शरीर छोड़ने वाले को याद करेंगे तो आप भी शरीर छोड़ देंगे। इसलिए सात नारायणों की गति क्या होती है, जो सतगुरु में बाद में आते हैं, जो बाद में आने वाले सात नारायण हैं, वो किसको फॉलो करते हैं? भगवान के किस रूप को याद करते हैं? माता के उसी रूप को याद करते हैं जो शरीर छोड़ देता है, ब्रह्मा। इसलिए उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। वो इस आने वाली नई दुनिया को इन आंखों से नहीं देख पाते। स्वर्ग में आएंगे, सत्य में जाकर के जन्म लेंगे, लेकिन परमात्मा बाप की जो डायरेक्ट बात है, वर्षा है, उसको प्राप्त नहीं करेंगे। ये कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है। कौन कहता है? ये ब्रह्मा कहता है कि मुझे भी उनको याद करना पड़ता है। ये उनको दूर क्यों कर दिया? बैठा तो उनके मस्तक में ही, जब ये वाणी चला रहा था, चलाने वाला सुप्रीम सोल शिव है, तो ब्रह्मा के मस्तक में ही बाजू में बैठा था ना, तो ब्रह्मा की सोल ऐसे क्यों कहता है कि मुझे भी उनको याद करना पड़ता है? उनको दूर क्यों कर दिया? जरूर आने वाला भविष्य का पार्ट है, जिसकी तरफ इशारा किया कि ब्रह्मा की सोल को भी उसको उस पार्टधारी को याद करना पड़ता है जो परमात्मा पार्टधारी के रूप में संसार में प्रकट होता है। ये भविष्य की बात है, ऐसे नहीं परमात्मा बाप बार बार आता है। उनको याद करना पड़ता है, इसका मतलब 69 में ब्रह्मा की सोल संपूर्ण नहीं हुई, वो भी किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके और उस बाप के स्वरूप को याद करती है। कौन सा स्वरूप? जो आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति वाला स्वरूप है। हमारी याद भी प्रवृत्ति मारती है, आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ निराकार को याद करते हैं, इसे विदेशी है, जिस सिर्फ निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, इब्राहिम बुद्ध कृष्ण वगैरह वगैरह, भारतवासी के निराकार को भी मानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हूँ, ब्रह्मा ने बोला, मैं कौन सी नदी हूँ? ब्रह्मपुत्र नदी दुर्सागर में जाके लीन हो जाती है। मेरे में लीन होने की बात नहीं है, मेरे में तुमको अपने संकल्पों को नहीं समाना है। मैं भी जिस परमात्मा बाप के संकल्पों में समाया जाता हूँ, उसी में तुमको भी समाना है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला लगता है। किसका मेला? ब्रह्मपुत्र नदी का। पुत्र क्यों कह दिया? ब्रह्मपुत्री नदी कही जाती है या ब्रह्मपुत्र कहा जाता है? दुनिया में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्री नदी है ना, बाबा उसे ब्रह्मपुत्र क्यों कहते हैं? ब्रह्मपुत्र इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ने के बाद जिस ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करता है वो रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो सब पुरुष स्वभाव वाले, इसलिए ब्रह्मपुत्र कहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों प्रैक्टिकल में चाहिए, दोनों का प्रैक्टिकल पार्ट चाहिए। उन दोनों का मिलन मेला लगता है, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता। کیا کہا؟ سرسوتی بیچ میں ہی لوپ ہو جاتی ہے، یگ کے آدھے میں سرسوتی نہیں تھی، عمر آدھے نہیں تھی، بیچ میں آئی اور بیچ میں ہی چلی جاتی. جان ساگر باپ میں برہم پترا اور گنگا کا میلا مانا جاتا ہے، تو میلا تو ایک ہی لگتا ہے. کلکتے میں برہم پترا ندی کا ساگر پر بہت بھاری میلا لگتا ہے. کیا کہا؟ یہ سارا کلہ کلے سے کٹا جہاں ہوتا ہے جا کر، اس کلکتے میں برہم پترا ندی اور ساگر کا بہت بھاری میلا لگتا ہے. چھوٹا موٹا ملن میلا نہیں، اور وہ سادھارن میلے تو ہوتے ہیں ندیوں ندیوں کے، ندیاں ملتی ہیں، وہ میلے میلے بنانے والے ہوتے ہیں، وہاں ساگر نہیں ہوتا. سنگم آدی کے جو میلے ہوتے ہیں، کمبھ آدی کے، لیکن یہ میلا جو برہم پترا اور ساگر کا میلا ہے، یہ بہت بھاری میلا ہے. برہم پترا ایک ہے اور میلا بھی ایک ہی بار لگتا ہے. ایسے نہیں کہ بار بار یہ میلا لگتا ہے، تو یہ بھی یہاں میلا لگتا ہے. کہاں؟ برہمنوں کی سنگم کی دنیا میں ایک بہت بھاری میلا لگتا ہے. ساگر نہ ہو تو میلا تھوڑا ہی کہیں گے. کیا کہا؟ اور میلے ہیں سب میلے بنانے والے، وہ ملن میلا کرنے سے تو نہ کرنا ہی اچھا ہے، اور ہی گند بڑھ جاتی ہے. لیکن اصلی میلا جو ہے وہ ہے پرماتما اور آتماؤں کا میلا. مما جاتی ہے تو ندیوں کا میلا لگتا ہے. یہ میلا لگا ہے ساگر اور برہم پترا ندی کے ساتھ. یہ تو تم آتے ہی سمجھ سکتے ہو. اگر وچار ساگر منتھن کر سکتے ہو تو وچار کرو. کیا؟ کہ دلی ہے ستھاپنا کاری، بمبئی ہے وناشکاری، اور کلکتہ اس بات میں سہیوگی رہے گا، آواز پھیلانے میں سہیوگی رہے گا، تو کیسے سہیوگی رہے گا؟ ضرور کوئی بڑا میلا لگتا ہے. اگر وچار ساگر منتھن کر سکتے ہو تو وچار کرو. یہ ساگر چیتنیہ ہے اور وہ ساگر جڑ ہے. چیتنیہ مانا مرلی میں چیتنیہ کا ارتھ بتایا ہے، بولتا چلتا. وہ ساگر تو جڑ ہے، بولتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، جہاں ہے وہاں ہی ہے. دہلی میں بابا جائے تو وہاں بھی ساگر برہم پترا کا میلا ہے. سب ندیاں ساگر سے نکلی ہوئی ہیں. کیا ایسے نہیں کلکتے میں ہی میلا لگتا ہے برہم پترا ساگر کا، دلی میں بھی ساگر اور برہم پترا کا میلا لگتا ہے. اس لیے بولا تھا کہ 42ویں ترمورتی شیو جینتی جب ہوگی تو بہت دھوم دھام ہوگی. دلی جیسے گاؤں نہیں ہو سکتی دھوم دھام، تو ایسے مرلی نے کیوں بولا؟ دلی کوئی گاؤں ہے کیا؟ نہیں، دلی تو بڑا شہر ہے، مہانگر ہے، لیکن برہما پترا اور ساگر کا جب میلا ہوتا ہے تو چیتنیہ ساگر اور چیتنیہ برہما پترا وہاں دھوم دھام ہو جاتی ہے ایڈوانس نالج کی. تو اس سمے کے لیے بابا نے اشارہ دیا، کوئی جڑ چتروں کی پردرشن کی بات نہیں ہے جو سن 78 میں 42ویں ترمورتی شیو جینتی پر دلی کے چاروں کونوں پر بڑے بڑے پلاسٹک کے چتر بنا کر کے انہوں نے پردرشت کر دیا. شیو بابا آ گیا، کوئی جڑ ساگر نہیں ہے، ये है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं माँ में एकम याद करो, बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, माँ में एकम याद करो बच्चे। ये तुम नहीं कह सकते हो क्या कि मुझे एक को याद करो, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं बच्चे माँ में एकम याद करो। तुम सन्मुख बैठे हो ना, कहने वाला कहता है माँ में एकम याद करो, किससे कहता है? सन्मुख बैठे हुए बच्चों से कहता है कि माँ में एकम याद करो। तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, सबको कहना है कि बाप को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी, मौत तो सबका होना ही, क्या अंतमति गति तो होगी लेकिन मौत सबका होगा। अभी तो देखो क्या लगा पड़ा है, अमेरिका आज कितना बड़ा है, ये बम्बई आदि कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहां तो थोड़े होते हैं शुरू में, पीछे आते जाते हैं, बच्चों को समझ में आता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी तुमको, तुमको बिगन डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। कौन? माया। परंतु पुरुषार्थ तुमको पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। तुम बाप का परिचय देंगे कि बाप आया हुआ है, वो वाइलोरा डाल देगी ये बाप आप कुछ नहीं, बाप नहीं आया हुआ है, वो हमें ही माला बनाने वाले बाप हैं। माया इस तरह दुबकाएगी। तो योग ऐसा रहना चाहिए जो माया तुमको कभी हिला न सके। अच्छा, मीठे मीठे चिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज है और स्मृति ने नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हुआ, ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? जीवन भी विशेष होगा, तो विशेष होगा या साधारण होगा? ब्राह्मण जन्म भी शेष, ब्राह्मण धर्म भी वो भी शेष, और ब्राह्मण कर्म भी शेष। क्यों? ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचयिता सर्वश्रेष्ठ है तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आज ब्रह्मा ब्रह्मा बाप का सैंपल है। क्या कहा? आज ब्रह्मा का सैंपल क्यों बताया? अंत ब्रह्मा क्यों नहीं कहा? है? जो सैंपल होता है उस सैंपल को ही फॉलो करना होता है। जब कहते हैं फॉलो फादर तो किसको फॉलो करना है और किस रूप में फॉलो करना है? दो प्रकार से फॉलो करना होता है। एक तो डायरेक्शन को फॉलो करना होता है, और दूसरा कर्मों में फॉलो करना होता है। तो यहाँ आदि ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करने के लिए बोला, अंत ब्रह्मा नहीं कहा कर्मों में फॉलो करने के लिए। इसका मतलब कि कर्णहार का पार्ट परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के द्वारा बजाते आदि। तो बच्चों को वैसे ही कर्म करना है जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म किए पाप। ये हुआ कर्णहार का पार्ट जिसे फॉलो करना है कर्मों में। और फिर दूसरी बात होती है फॉलो करने की डायरेक्शन को, वो है करावनहार। पहले कर्णहार या पहले करावनहार? पहले कर्णहार, वो पार्ट बजाया कर्मों में फॉलो करने के लिए। फिर लास्ट का पार्ट है करावनहार, खुद करे या न करे लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा। तो करावनहार का पार्ट है सख्त पार्ट। तो उल्टा न कर लें कभी, क्योंकि लास्ट पार्ट है सदगुरु का। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि गुरु जो कर्म करे वो कर्म नहीं करना है, लेकिन गुरु जो कहता है वो करना है। लेकिन वो तो भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते हैं, बात कहाँ की है? बात इस समय संगम युग की है। तो कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप करते हो? के आकारी स्टेज में रहने वाले को फॉलो करते हो, जो मनन चिंतन मंथन की सरस्ताई स्टेज में रहने वाला है? कर्मों में किसको फॉलो करते हो? इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा शीर्ष बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि हमें बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? क्या लक्ष्य रहा? ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य रहा। क्या कह रहे हैं बाप समान बनने के लिए? शरीर छोड़ रहे क्या और बाप समान बन जाए? शरीर छोड़ने की बात नहीं है। ब्रह्मा बाप अभी भी शरीरधारी है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त स्टेज वाला हो है। अव्यक्त स्टेज का मतलब है इस व्यक्त दुनिया से उसका कनेक्शन नहीं है। बुद्धि का देह और देह के संबंधों की दुनिया जैसे पूर्व जन्म की दुनिया हो गई। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनने का अनुभव करना है। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमारी हो या राजकुमार हो, तो विशेष का जन्म भी होने के कारण हर समय सदा और स्वतः ये विशेषता रहती है। वो बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। पुरुषार्थ करती है कि मैं राजकुमारी हूँ, तो ये स्मृति में लाना है। वो याद करती है क्या कि मैं राजकुमारी हूँ? राजकुमार या राजकुमारी जो होते हैं वो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार राजकुमारी हूँ? नहीं, उनको नेचुरल सदा स्मृति में रहता ही है, सहज याद होती है ना। चाहे कर्म अपने रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाती है क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मणों की नेचर क्या है? आपके स्वभाव संस्कार विशेष हैं या साधारण हैं? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था या चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना या सोचना यथार्थ है क्या? मैं कौन? मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है? राइट है ये कहना? अगर नहीं राइट है तो उस समय क्यों बोलते हो? इस समय ब्राह्मण नहीं बोलता है, माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल की सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। कभी भूलना और कभी याद होना ऐसे नहीं, तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति में लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बना लिया। इसका अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात संस्था स्वरूप बनना है और दूसरों को भी बनाना है, यही लक्ष्य रखा ना? सभी ने रखा था कि कोई कोई ने रखा था? तो रिजल्ट क्या निकली? अव्यक्त वर्ग की। अपने आप को चेक किया कि मैं इस सातारी दुनिया से अव्यक्त हो चुकी हूँ, देह और देह की संबंध की दुनिया से दूर मनन चिंतन मंथन की दुनिया में अव्यक्त और आकारी स्टेज वाली अनुभव करते हो। परीक्षा भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान को और लक्ष्य को दोनों की स्मृति से कहां तक सफलता अनुभव की? ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की या ये सोचा कि अगर तो वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा? वर्ष परिवर्तन के साथ साथ क्या परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से क्या किया? जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, या ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे? समय और स्वयं की गति समान रहती है? वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाले आप विशेष आत्मा हो। तीव्र गति से वर्ष संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया? तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र रही कभी मध्यम रही? परीक्षा अर्थात जिसका पुराने संसार से रिश्ता न रहे, तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध के रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण के रूप में, चाहे किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण के रूप में, या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण के रूप में कितने परसेंटेज में रही? दूसरा प्रश्न, ऐसे ही पुराने संसार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज रही? परीक्षा अर्थात डबल लाइफ। कौन सी डबल लाइफ? कोई फुल लाइफ की बात नहीं है, डबल लाइफ माना एक तो ज्ञान की लाइफ से भरा पूरा हो और दूसरा हल्का फुल्का हो, भारीपन महसूस न हो। तो ऐसी डबल लाइफ रही तो निजी लाइफ स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा? साथ साथ लाइफ अर्थात हल्कापन स्वच्छ परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइफ और हल्के रहे? मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे? इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे? ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे? इसको कहा जाता है स्वर्ग से तन की तीव्र गति की स्थिति। सेवा किसकी करनी है? सेवा करनी है आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की सेवा करनी है। और वो सेवा लेने वाले अगर सामने आते हैं तो कहीं उनको देखते ही हम भारी तो नहीं हो जाते? परिचितन की हल्की फुल्की स्टेज रहती है, या जो सेवा लेने आए उनको देखते ही आग बबूला हो जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं रहती? तो इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, उसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। जैसे एक विशेष आत्मा हो, ये स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बात समान बनना अति सहज होकर, क्योंकि स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप बन जाती। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, रिजल्ट कब आती है? जब परीक्षा होती है तब रिजल्ट आती है, तो बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी और सदा शक्तिशाली, यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है, मतलब थोड़े ऐसे हैं जो सदा शक्तिशाली स्टेज में रहते हैं, अपने बैलेंस को लूज नहीं करते, हल्के फुल्के रह करके सेवा करते हैं। स्मृति दिवस भी मना लिया, बहुत स्नेह से मनाया। अब व्यस्त वर्ष तो पूरा हुआ लेकिन स्मृति दिवस 18 जनवरी भी मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया है, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बन रहे हैं। सुना रिजल्ट क्या हुआ, आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप बनना है। क्या करना है? सदा शक्ति स्वरूप बनेगी ना, देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। माना इस वर्ष खास परीक्षा होगी कि कौन कौन कितने सदा शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहते हैं, सदा शक्तिशाली रहते हैं या कब कब शक्तिशाली, कब कब यथा शक्तिशाली और कब कब आसक्त हो जाते हैं। टीचर से क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगी? सदा शक्तिशाली की लाइन में आएंगी या कभी ज्यादा अपोजिशन होगा तो डाउन भी हो जाएंगे? सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या होगी? या कि टाइम चाहिए सदा शक्तिशाली बनने के लिए? जिसको करना होता है वो कब नहीं सोचता है कि कब कर लेंगे। दृढ़ संकल्प का अर्थ है कि अभी करना है, और साधारण संकल्प का अर्थ है कि हो जाएगा, कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो, कौन हो? अब वाले हो। अच्छा, सच्ची सेना बहुत बड़ी सेना है, तो कब वाले हो या अब वाले हो? अच्छा, पांडव क्या समझते हो? अब वाले हो। देखो, नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते, लेकिन आखिर वो समय भी आएगा जो नाम भी सुनाएंगे। क्या कहा कि कौन शक्तिशाली स्टेज में स्थित रहते हैं और कौन साधारण बन जाते हैं और कौन पूछ दबा के बाहर खड़े होते हैं। घबरा जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की है? पंजाब हरियाणा की ज्यादा है, इंदौर भी ज्यादा है, इंदौर तो देखेंगे। पंजाब इंदौर क्या कमाल करता है, क्योंकि टीचर्स भी ज्यादा आती है। संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा, क्या करेंगे, कौन सा नंबर लेंगे? पंजाब क्या नंबर लेगा, नंबर वन लेंगे या सेकंड लेंगे? नंबर वन लेंगे कि सेकंड चलेगा? नहीं चलेगा। और इंदौर वाले वो भी नंबर वन है, और कर्नाटक क्या करेंगे? कर्नाटक कौन सा नाटक दिखाएगा? नाटक सर, नाटक कर्नाटक मानो सर नाटक। तो हीरो नाटक हो, हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नाटक नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र, वो तो महान ही बनेंगे ना, कि कभी साधारण बनेंगे कभी महान बनेंगे, सदा महान। अच्छा, यूपी और राजस्थान, यूपी को क्या कहते हैं है? यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतित पावन करने वाली है, तो पावन बनने और बनाने में नंबर वन होना, पहले तो खुद नंबर वन पावन बनना पड़े। यूपी वाले भी नंबर वन बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर टू नहीं कहेगा। राजस्थान तो लकी है ही, राजस्थान का लक है जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है। हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्थान कौन सा है? एक हद का राजस्थान है, एक बेहद का राजस्थान है। हद का राजस्थान कहाँ है और बेहद का राजस्थान? मुझे यहाँ बता, राजस्थान है दिल्ली, दिल्ली है देहद के राजाओं का स्थान, दिल्ली ही एक ऐसा तख्ता है जहाँ हर धर्म के राजाओं ने राजाई की है, तो दिल्ली है देहद का राजस्थान। तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना, तो सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर वन। लेकिन वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करें हम नहीं कर सकते, चाहते तो नहीं है कि हल्की अवस्था बन जाए, लेकिन हो जाता है। ऐसी भाषा नहीं सोचना। अच्छा, डबल विदेशी भी बैठे हैं, सेवा में रेट अच्छी कर रहे और नंबर में भी रेस में नंबर वन आत्मा है ना, तो नंबर वन आना है, अच्छा है। विदेश देश वालों को हिम्मत दिलाने में निमित्त अच्छा बना, तो उस हिम्मत दिलाने के कारण ऐसा मदद मिलती है, समझा? ऐसा मदद है।